हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सरलता आर्जवम का अर्थ है कि बिना किसी कूट अन्यत्र एक जगह उदाहरण दिया है भीष्म देव और द्रोणाचार्य का। इस संबंध में द्रोणाचार्य को जब पूछा गया कि उनकी मृत्यु कैसे होगी, तो उन्हें सब बताया कि अगर मुझे मेरे पुत्र के मृत्यु के बारे में सुना सुनाया गया तो मैं शस्त्र त्याग दूंगा और मुझे मारा जा सकता है, अन्यथा जब तक मेरे हाथ में शस्त्र है ना तो मारा जा सकता है ना हराया जा सकता है। ऐसे ही भीष्म पितामह को बताया पूछा गया कि आपको कैसे मारा जाए, तो उन्हें सत्य बताया कि अगर कोई स्त्री मेरे सामने आए तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो शिखंडी को सामने रख करके युद्ध किया गया, और शिखंडी क्योंकि एक ही जीवन में स्त्री भी थे और पुरुष भी थे, इस कारण से इन्होंने युद्ध नहीं किया भीष्म पितामह ने, और दोनों लोग धराशायी हुए। तो आप देख रहे हैं कि इस सत्य वो जानते थे, और ये भी जानते थे कि अगर वो बताएंगे होगी, लेकिन फिर भी उन्होंने सत्य को बताया, और यही इसे कहते हैं सरलता। जहां तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आचार्य उपासनम आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह अत्यावश्यक है, क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे समस्त सेवाएं समर्पित करे अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। क्योंकि प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आचार्य का मतलब खाली आरती करना नहीं होता है, उपासना मतलब निकट रहना। निकट इसलिए, निकट तो गुरु के मच्छर भी रहता है खून चूसने के लिए लेकिन ऐसा खून चूसने वाला शिष्य हमें नहीं बनना है, निकट रहना है सेवा करने के लिए। तो आजकल के जमाने में जैसे इस्कॉन में भी आप देखेंगे कि जो गुरु महाराज हैं वो बहुत दूर रहते हैं, तो निकट कैसे रहे? निकट रहने का अर्थ है उनकी वाणी के द्वारा सेवा करें। जो वो वाणी के द्वारा हमको बोलते हैं करने के लिए, अगर हम उसका अक्षरश पालन करते हैं तो हम आचार्य के अपने गुरु के एकदम निकट रहते हैं, और अन्यथा अगर हम आज्ञा पालन नहीं करते तो निकट रहते हुए भी हम उनके हृदय से बहुत दूर रहते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति को अपने गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। अब गुरु का मतलब प्रमाणिक गुरु भी यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है। प्रमाणिक गुरु का अर्थ है जो चार प्रमाणिक परंपराओं में, अर्थात ब्रह्म परंपरा, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय में हो, और किसी संप्रदाय में कोई भी व्यक्ति गुरु होगा तो प्रमाणिक गुरु नहीं है। संप्रदाय विहीनस्य ये मंत्रश्च निष्फला मतः। जो संप्रदाय से विहीन है उसके मंत्र, जो सो कॉल्ड तथाकथित गुरु हैं, अगर वो मंत्र देते भी हैं तो वो निष्फल होंगे, वो कृष्ण प्रेम प्राप्त कराने में संभव नहीं होंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति प्रामाणिक गुरु की योग्यताएं समझे और उसके अनुसार गुरु की शरण में जाए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके भौतिक जगत में, क्षमा कीजिएगा, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर सेवा के द्वारा गुरु प्रसन्न होते हैं तो भले ही प्रारंभ में कोई व्यक्ति भक्ति के विधि विधानों को ठीक से पालन ना भी कर पाए तो भी वो प्रगति करता है, और आगे जाकर के वो विधि विधानों का पालन करने में भी सक्षम हो जाता है। और ये यही गुरु की कृपा है। एक वैष्णव, एक गुरु हमेशा चाहते हैं कि उनके शिष्य भक्ति में प्रगति करें, तो इस कारण से उनकी जो इच्छा है ये बड़ी प्रबल है। इस संबंध में छोटी सी एक लीला है। एक वासुदेव दत्त नाम के भक्त थे जिन्होंने महाप्रभु से बोला कि जितने भी जीव हैं जो इस जगत में आपसे विमुख होकर के दुख भोग रहे हैं, उनका दुख मुझे देखा नहीं जाता, तो कृपया आप इन सबको वैकुंठ ले जाइए और इनका कर्म जो है वो मैं भोगूंगा इस जगत में अनंत समय के लिए। तो महाप्रभु ने बोला कि आप वैष्णव हो और आपकी इच्छा मात्र से ये सब वैष्णव हो जाएंगे, और कृष्ण तो वैष्णव का उद्धार करते ही हैं, तो इसलिए आपको कोई इसके लिए नरक जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं खाली इस बात को बोल रहा हूं कि एक वैष्णव का, एक गुरु का स्वभाव ही होता है कि वो सहिष्णु होते हैं, वो शिष्य के दोषों को बहुत महत्व नहीं देते, उन दोषों को सुधारने का प्रयास करते हैं और अपनी कृपा करते हैं। तो अगर शिष्य इस प्रकार से सेवा भाव वाला हो तो सहज रूप से दया गुरु की उत्पन्न होती है और उनकी कृपा से वो और प्रगति कर पाता है। तो इसलिए बहुत बात मैं रिपीट करूंगा कि केवल पुस्तकों को पढ़ करके ही भक्ति में प्रगति करने का प्रयास ना करें। पुस्तकें पढ़ना बहुत आवश्यक है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वैष्णव के आश्रय लेकर के व्यक्ति को प्रगति करने का प्रयास करना चाहिए और तभी प्रगति होगी भी ही। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता शौचम अनिवार्य है। पवित्रता दो प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य। बाह्य पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूलि हट जाती है। तो ये तो स्पष्ट आप समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो कोई भी क्रिया करते हैं, चाहे पैसिवली या एक्टिवली, एक्टिवली मतलब जानबूझ के करें या अनजान में ऐसे ही करते रहे, उस सबका प्रभाव हमारे चित्त पे होता है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं हरे कृष्ण कर रहा हूं तो मुझे स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, नित्य रूप से स्नान करना, जैसे कि ध्रुव महाराज को नारद मुनि बताते हैं कि तुम हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो, लेकिन ऐसा नहीं बोला कि अब सुबह उठ करके बेड टी पियो, चाय पियो, ऐसा नहीं। सुबह भी उनको सुबह, दोपहर और शाम तीन बार स्नान करने के लिए बोलते हैं यमुना जी में। यमुनायाम जलम शुचिः, तो पवित्र जल में यमुना जी के स्नान करके पवित्र हो। तो बाह्य शुद्धता का बहुत फर्क पड़ता है, साफ कपड़े पहनना, जैसे कि जिन बिस्तर पे हम सोते हैं, जिन कपड़ों में हम सोते हैं वो कफन के समय प्राय हो जाते हैं, तो उन कपड़ों को धारण नहीं करना चाहिए। सोते समय अलग कपड़े धारण करना चाहिए, फिर उठने के बाद स्नान करना चाहिए, फिर ही फ्रेश ताजे कपड़े पहनने चाहिए। और रात में जो हम कपड़े पहनते हैं उसको उससे उसको त्याग देना चाहिए और उसके बाद धुलने के बाद ही उनका उपयोग करना चाहिए। ये सब नियम हैं जो कि हमें व्यक्तिगत रूप से गुरु के मार्गदर्शन में हमें सीख लेना चाहिए इन वस्तुओं को। तो ये सब पवित्रता के नियम हैं और इसको भगवान ध्यान दीजिएगा कि आप ये नहीं कह सकते कि भगवान इस भौतिक जगत के परे हैं, तो इस भौतिक जगत में हम क्या करते हैं इससे भगवान को फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल फर्क पड़ता है। भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि ये सब ज्ञान है और भगवान इसकी सराहना भी करते हैं कि जीवन में व्यक्ति की पवित्रता होनी चाहिए और शारीरिक पवित्रता होनी चाहिए। और ये भी ठीक है कि हमने स्नान कर लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, लेकिन बुरे विचार मन में रखते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, ये मन की गंदगी है, तो उसको त्यागना चाहिए। और कैसे त्यागेंगे? हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। भगवान के नाम का संकीर्तन करने से व्यक्ति का मन पवित्र होता है, जैसे कि महाप्रभु ने बोला चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से हमारा मन शुद्ध होता चला जाता है। और इसलिए हम देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से बहुत सारे लोग, भले ही उनका मन भगवान में ना लगता हो, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण बार बार करने से वो पाप करने की जो प्रवृत्ति है उससे वो मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। दृढ़ता स्थैर्यम का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक व्यक्ति ये स्वीकार न कर ले कि जगत दुख का घर है और अब मुझे जम करके भजन करना है ताकि भगवत प्राप्ति हो, तब उसको क्या वेद समझाएगा, क्या उपनिषद समझाएगा? जैसे बोला जाता है कि घोड़े को आप पानी तक लेके आ सकते हो, लेकिन पानी पीना तो घोड़े को ही पड़ेगा। तो इसलिए हर व्यक्ति का संकल्प खुद का है। शास्त्र पढ़ करके, साधुओं का संग करके हम प्रेरित हो जाते हैं कि हाँ भाई हमको भजन करना है, लेकिन भजन करने का, सेवा करने का संकल्प तो हमारा ही है और उस संकल्प के बिना हम ठोस प्रगति अर्थात पक्की प्रगति नहीं कर सकते। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम जब साधना करते हैं तो कभी कभी मन करता है, कभी कभी नहीं करता है, तो इन मन के वेगों से निवृत्त होते हुए व्यक्ति भजन करे, भक्ति करे, रोज नियमित रूप से भक्ति करे, दृढ़ संकल्प लेके कि मुझे अब कृष्ण की प्राप्ति करनी ही है, तभी वो प्रगति कर पाएगा। ये सब ज्ञान है। आत्मसंयम आत्मविनिग्रह का अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार न करना। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी किसी भी वस्तु को त्याग देना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो। यह असली वैराग्य है। इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि वे सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहती हैं। अनावश्यक मांगों की पूर्ति नहीं करनी चाहिए। इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में अपने कर्तव्य की पूर्ति होती हो। सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में न आने वाली इंद्रिय जीव है। यदि जीव पर संयम कर लिया गया तो समझो अन्य सारी इंद्रियां वशीभूत हो गईं। जीव का कार्य है स्वाद ग्रहण करना तथा उच्चारण करना। अतएव नियमित रूप से जीव को कृष्णार्पित भोग के उच्चिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए। जहां तक नेत्रों का संबंध है उन्हें कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखने देना चाहिए, इससे नेत्र वश में होंगे। इसी प्रकार कानों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने में लगाना चाहिए और नाक को कृष्णार्पित फूलों को सूंघने में लगाना चाहिए। यह भक्ति की विधि है और यहां यह समझना होगा कि भगवद गीता केवल भक्ति के विज्ञान का प्रतिपादन करती है। भक्ति ही प्रमुख एवं एकमात्र लक्ष्य है। भगवद गीता के बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक के ध्यान को अन्य विषयों की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवद गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी विषय नहीं है। तो बहुत सुंदर बात है, इस सारे चीज को आप समझ रहे हैं। बस एक इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है कि आत्म विनिग्रह का अर्थ है अपनी इंद्रियों का संयम, और इंद्रियों का संयम ना करना ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ी रोड़ा है। इसको भगवान गीता में पहले भी समझा चुके हैं, राग और द्वेष ये परिपंथिन है। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति रास्ते में चल रहा हो तो जो चोर लुटेरे हैं उस प्रकार से उस पथिक का, उस यात्री को उसका धन छीन लेते हैं। ऐसे इंद्रियां डकैत की तरह है जो हमारी कृष्ण प्रेम रूपी या कृष्ण भक्ति रूपी जो धन है जो हमारे हृदय में रहता है, हमारे चित्त में होता है, उसको छीनने में लगी रहती इंद्रिय भोग में हमें लगा लगा करके। तो इस पे व्यक्ति को कंट्रोल करना है। तो प्रभुपाद जी ने आत्म विनिग्रह का अर्थ या इंद्रिय संयम का अर्थ ये नहीं दिया है कि हम देखे नहीं, हम बोले नहीं, हम सोचे नहीं, ऐसा संभव नहीं है, अपितु अपनी इंद्रियों को भगवत संबंधी कार्यों में लगाएं। कई बार हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आप समझते होंगे कि इंद्रिय संयम करने का अर्थ यही है कि व्यक्ति इंद्रियों को लगातार कृष्ण की सेवा में लगाए। अब इसमें संयम की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि इंद्रियां अपने स्वभाव से बद्ध होने के कारण इंद्रियां अपने स्वभाव से कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहती हैं, तो जबरदस्ती करनी पड़ती है। जबरदस्ती करके कृष्ण के रूप का दर्शन करना होता है, नाम उच्चारण करना होता है और भगवान का प्रसाद ग्रहण करना होता है। इस संबंध में एक और बात शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि देखिए अन्य इंद्रियों को जब उनके भोग के विषय नहीं मिलते हैं तो भोग की प्रवृत्ति कम हो जाती है। जैसे कि अगर किसी को सुंदर रूप देखने की इच्छा है और रूप ना प्रस्तुत हो तो धीरे धीरे उसके मन से रूप की वासना चली जाती है। लेकिन जीव एक ऐसी वस्तु है, अगर उसको अच्छे पदार्थ ना खाने को दिए जाएं तो उसकी और वासना बढ़ जाती है, और अगर बहुत अधिक अच्छा अच्छा खिलाया जाए और तो अन्य इंद्रियां बहुत प्रबल हो जाती हैं और अन्य इंद्रियों को संयमित करना मुश्किल होता है। तो इसलिए ये प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जीव को कंट्रोल करना अर्थात सभी इंद्रियों को कंट्रोल करना, क्योंकि इसी से सभी अन्य इंद्रियों को भोजन प्राप्त होता है। तो क्या करना है? हमें भगवान कृष्ण का प्रसाद सीमित मात्रा में ग्रहण करना है, ना इतना कम कि हम बहुत रोगी हो जाएं और ना इतना अधिक कि हमारी इंद्रियां बहुत प्रबल हो जाएं और हमसे सीमित ना हो। तो इसलिए अपनी इंद्रियों को, सभी इंद्रियों को कृष्ण को अर्पित कर देना, यही आत्मविनिग्रह है। और इससे आत्मविनिग्रह तो होता ही है, साथ साथ हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी होती है। और इसके विपरीत इंद्रियों को मनमाने तरीके से कार्य करते रहना ये अज्ञान का लक्षण है और इससे हमारे आध्यात्मिक विनाश होता है। तो इससे व्यक्ति को बचना चाहिए। मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्मा मानना। जब कोई ये जान जाता है कि वह शरीर नहीं अपितु आत्मा है तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार तो रहता ही है, मिथ्या अहंकार की भर्त्सना की जाती है वास्तविक अहंकार की नहीं। वैदिक साहित्य में बृहदारण्यक के उपनिषद में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं। मैं हूं ही आत्मभाव है और यह आत्म साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। मैं हूं का भाव ही अहंकार है, लेकिन जब मैं हूं भाव को मिथ्या शरीर के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह मिथ्या अहंकार होता है। जब तक इस आत्मभाव या स्वरूप की वास्तविकता के लिए, जब इस आत्मभाव या स्वरूप को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह वास्तविक अहंकार होता है। ऐसे कुछ दार्शनिक हैं जो यह कहते हैं कि हमें अपना अहंकार त्यागना चाहिए, लेकिन हम अपने अहंकार को त्यागेंगे कैसे, क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप, लेकिन हमें मिथ्या देहात्म बुद्धि को त्याग करना ही होगा। थोड़ा समझ लेना चाहिए इसका अर्थ क्या है। देखिए, आप सभी लोगों के अंदर ये भावना है कि आप हैं, इसे ज्ञान शक्ति कहते हैं, और ये आत्मा का स्वरूप है। आत्मा के अंदर ही ये बुद्धि हो सकती है, आत्मा के कारण ये बुद्धि होती है कि वो है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, तो कहेंगे हाँ मैं सुन रहा हूं। लेकिन अगर मैं अपने मोबाइल से जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उसको पूछता हूं क्या तुम मेरा लेक्चर सुन रहे हो, तो इस बात का अनुभव नहीं कर सकता है, भले ही उस लेक्चर को वो पूरा रिकॉर्ड कर ले। तो आप यहां पे देख सकते हो कि मैं हूं, ये होने की भावना आत्मा में हमेशा रहती है। अब मैं हूं के बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है कि मैं क्या हूं। अगर मैं सोच रहा हूं कि मैं शरीर हूं तो ये मिथ्यांकार है, या मैं सोचता हूं कि मैं ये मन हूं तो ये मिथ्यांकार है, क्योंकि मन मिथ्या है और शरीर मिथ्या है। मिथ्या अर्थात ये नहीं है कि वो है नहीं, लेकिन मिथ्या का अर्थ है कि वो क्षणिक है, लगातार परिवर्तनशील है। अगर हम बोलते हैं कि मैं शरीर हूं तो कौन सा शरीर मैं हूं, जिस शरीर में मेरा जन्म हुआ था वो शरीर हूं, या 5 साल का शरीर था वो शरीर हूं, या 15 का था, या 20 का था, या 30 का, कौन सा शरीर मैं हूं, किसकी तरफ आप अपनी उंगली को इंगित करेंगे, ये आप समझ सकते हो इस बात पर विचार करके कि हम लोग ये शरीर नहीं है। तो इस प्रकार से मिथ्या अहंकार से मुक्त होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति को सच्चे अहंकार को ग्रहण करना चाहिए, जैसे कि मैं कृष्ण का दास हूं और मैं कृष्ण का शाश्वत दास हूं। क्यों शाश्वत शब्द बोल रहे हैं, कि ऐसा नहीं कि मैं भौतिक जगत में हूं तब कृष्ण का दास हूं और बाद में कृष्ण बन जाऊंगा, ये भी एक अहंकार मिथ्यांकार है, ये भी गलत धारणा है ना। मैं कृष्ण का शाश्वत दास हूं अर्थात इस समय भी कृष्ण का दास हूं, और आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद भगवत प्राप्ति करने के बाद भी कृष्ण का दास ही रहूंगा, तो ये सच्चा अहंकार है, इसका त्याग नहीं करना है अभी, तो इसकी ही पोषण, इसकी ही पुष्टि करनी है। लेकिन जो मिथ्या अहंकार है जिसमें हम सोचते हैं कि मैं शरीर हूं और शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, इसका हमको पोषण नहीं करना है, इसको तो हमें धीरे धीरे जड़ से काटने का प्रयास करना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृतांत हैं। श्रीमद् भागवत में जन्म से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है, अतएव हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते। इस प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं जिनका उल्लेख प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है, इनकी विवेचना की जानी चाहिए। जहां तक रोग तथा वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबों को इनका व्यवहारिक अनुभव है, कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन इनसे बचा नहीं जा सकता। जब तक हम जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर पैराग्राफ है। देखिए, ये जगत दुख का घर है जिसमें सभी जीवात्माएं जो शरीर को मैं मान रही हैं, आत्म मान रही हैं, वो सब इसमें फ्राई की जा रही हैं, जैसे एक कढ़ाई में तेल डाल करके पकौड़े फ्राई किए जाते हैं। लेकिन इतना फ्राई होने के बाद, इतने दुख प्राप्त करने के बाद भी हम सोचते हैं कि हम ठीक हैं, या अगर ठीक है नहीं तो आगे जाकर ठीक हो जाएंगे, कुछ व्यवस्था करूंगा और उसके द्वारा मेरे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा ज्ञान है। इस संबंध में एक बहुत सीनियर वैष्णव क्लास दे रहे थे, कह रहे थे कि 20 साल जब करते रहे, भक्ति करते रहे, तब भी उनके मन में था कि जगत इतना बुरा तो नहीं है ना, लेकिन 20 साल भक्ति करने के बाद उनको समझ में आने लग गया कि नहीं, ये जगत में हम लोग लगातार दुख ही भोग रहे हैं। तो ठीक है, हम ये प्रचार भी करते हैं, लेकिन जब तक हमारे हृदय में ये भोग की वासना है कि भाई जगत में मैं कुछ भोग करके सुखी हो जाऊंगा, तब तक हमें साक्षात्कार हुआ नहीं है कि हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे हुए हैं। एक और बात महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति मृत्यु चाहता नहीं है, बुढ़ापा चाहता नहीं है, बीमारी चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी आती है, क्योंकि ये उच्चतर व्यवस्था का के कारण होती है, जिस व्यवस्था पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। दूसरी बात, इन चीजों को हम लोग पैसे के द्वारा नहीं काट सकते हैं। प्रायः हम सब लोग सोचते हैं कि धन के द्वारा हमारी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। शास्त्र तो वस्तुतः कुछ और ही बोलता है कि सारी समस्या का कारण धन है। लेकिन चलिए, अगर आप सोचते भी हैं कि आपके धन से सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा, तो क्या आप धन के द्वारा ये निश्चित कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे? क्या आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप वृद्ध नहीं होंगे? हो सकता है धन के द्वारा हम बुढ़ापे को अपने गाल से खींच करके गले तक लेके चले जाएं, अर्थात जो गाल की झुर्रियां हैं वो खिसका करके गले में खिसका दें। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि झुर्रियां चली जाएंगी और अंततो गत्वा मृत्यु तो आएगी ही। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो व्यक्ति समझता है कि धन के द्वारा इन परेशानियों को मैं इलाज नहीं कर पाऊंगा। जैसे धन के द्वारा जो धनी व्यक्ति के यहां जन्म लेता है, उस बच्चे को भी माँ के गर्भ में रहना पड़ता है और वहां की कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि धन के द्वारा इन वस्तुओं का, इन परेशानियों का इलाज संभव नहीं है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ, जहां तक संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ यह नहीं कि उनके लिए कोई भावना ही ना हो। यह सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं हैं, लेकिन जब यह आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो तो उनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। घर को सुख में बनाने के सर्वोत्तम विधि कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूर्ण रहे तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत की विधि अत्यंत सरल है। इसमें केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना होता है, कृष्णार्पित भोग का उच्चिष्ट ग्रहण करना होता है, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है और अर्चा विग्रह की पूजा करनी होती है। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे। परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः तथा सायकाल बैठकर साथ साथ हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। यदि कोई इन चार सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावनामृत विकसित करने में ढाल सके, तो पारिवारिक जीवन का त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल न रहे तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साक्षात्कार करने या उनकी सेवा करने के लिए सर्वस्व निछावर कर दे, जिस प्रकार अर्जुन ने किया था। अर्जुन अपने परिजनों को मारना नहीं चाह रहा था, किंतु जब वह समझ गया कि ये परिजन कृष्ण साक्षात्कार में बाधक हो रहे हैं, तो उसने कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया। वह उनसे लड़ा और उसने उनको मार डाला। इन सब विषयों में मनुष्य को पारिवारिक सुख जीवन के सुख दुख से विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि संसार में कोई कभी भी ना तो पूर्ण सुखी रह सकता है और ना दुखी। तो एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि संतान और पत्नी इत्यादि के प्रति प्रेम होना या उनके प्रति अनुकूल भाव होना ही स्वाभाविक है, लेकिन मुख्य बात व्यक्ति को समझ में आना चाहिए कि ये जीवात्माएं हैं जो पत्नी और बच्चों के रूप में उनके सामने उपस्थित हैं, और उसका एकमात्र कर्तव्य है कि उन्हें कृष्ण भावना भावित बनाए। और अगर वो कृष्ण भावना भावित नहीं है तो त्यागना भी हम आज समाज में ठीक नहीं है, लेकिन एटलीस्ट तुरंत, लेकिन अपना कर्तव्य फिर उपेक्षा की भावना से करना चाहिए, अर्थात बस कर्तव्य भावना से करना चाहिए और अपनी भक्ति को बढ़ाते रहना चाहिए। वस्तुतः शादी करने के पहले ही व्यक्ति को विचार कर लेना चाहिए कि जिससे वो शादी कर रहा है, क्या वो कृष्ण भावना भावित होने के लिए इच्छुक है या नहीं। और अगर वो नहीं है तो फिर इस प्रकार के बंधन में ना पड़ करके व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति से शादी करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होने के लिए कम से कम इच्छुक तो हो। और जैसे प्रभुपाद ने बताया है, मूलभूत सिद्धांत है विग्रहों की सेवा करना, हरे कृष्ण मंत्र का सुबह शाम कीर्तन करना और भगवद्गीता भागवत जैसे ग्रंथों का विचार विमर्श करना। तो अगर व्यक्ति ना कर सके तो कम से कम रिकॉर्डिंग चला सकता है, आजकल के समाज के हम परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं और लोग सुन सकते हैं, और धीरे धीरे अगर वो परिपक्व हो जाते हैं तो खुद भी चर्चा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी को कृष्ण भावना में लगाना, जिस प्रकार से हम लोग अपने बच्चों के लिए चिंतित होते हैं कि वो पढ़ रहे हैं कि नहीं, ये फर्स्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उसी प्रकार से व्यक्ति को सोचना चाहिए कि वो भक्ति में भी प्रगति कर रहे हैं या नहीं। ये सच्चा प्रेम है परिवार वालों के प्रति, क्योंकि मृत्यु से आप नहीं बचा सकते हो, कोई नहीं बचा सकता है, लेकिन भगवान ही बचा सकते हैं। तो जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़वा देना या उनसे बचा लेना ये पिता का कर्तव्य है, और व्यक्ति को इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए कि उसके ऊपर जो आश्रित लोग हैं इस जन्म में उनको दोबारा जन्म न लेना पड़े, और इस प्रकार से घर परिवार में रहते हुए भी व्यक्ति विरक्त रह सकता है। सुख दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाले हैं, मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहना सीखे, जैसा कि भगवद गीता में उपदेश दिया गया है। कोई कभी भी सुख दुख के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता, अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकतावादी जीवन शैली से अपने को विलग कर ले और दोनों ही दशाओं में समभाव बनाए रहे, अर्थात सुख में भी कृष्ण की भक्ति करता रहे और दुख में भी कृष्ण की भक्ति करता रहे। सामान्यतः जब हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब हम अनिच्छित घटना घटती है तो हम दुखी होते हैं, लेकिन यदि हम वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हों तो ये बातें हमें विचलित नहीं कर पाएंगी। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होगा। विपथ हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है भक्ति की नव विधियों, कीर्तन श्रवण पूजन आदि में प्रवृत्त होना, जैसा कि नवे अध्याय में के अंतिम श्लोक में वर्णन हुआ है। इसी विधि का अनुसरण करना चाहिए, अर्थात श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण इत्यादि भक्ति को अटूट रूप से, यानी कि हर दिन करना है, नियमित रूप से करना है। तो इसके बीच में सुख दुख आते रहेंगे, कभी अच्छी वस्तु मिलेंगी, कभी अच्छे खाद्य पदार्थ मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन इनसे प्रभावित हुए बिना व्यक्ति को निरंतर भक्ति करते रहना चाहिए। कभी स्वास्थ्य अच्छा होगा, कभी नहीं होगा, लेकिन दोनों ही अवस्था में व्यक्ति को भक्ति करते रहना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य भौतिकतावादी लोगों से मिलना नहीं चाहेगा, इससे उसे हानि पहुंच सकती है, अर्थात उसके हृदय में भी भौतिक वासनाओं का निर्माण हो सकता है, हो ही जाएगा। इसलिए बहुत सतर्क रहता है भक्त, अपने हृदय के इस प्रेम को, के खजाने को बचा के रखता है भौतिकतावादी लोगों के संग से। मनुष्य को चाहिए कि वह यह परीक्षा करके देख ले कि वह अवांछित संगति के बिना एकांतवास करने में कहां तक सक्षम है। यह स्वाभाविक ही है कि भक्त में व्यर्थ के खेल कूद या सिनेमा जाने या किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि वह यह जानता है कि यह समय की व्यर्थ गवाना है। स्वाभाविक इसलिए क्योंकि उसकी स्वाभाविक रुचि भगवत भक्ति में, भगवत भक्ति के कार्यों में होने लगती है, और कुछ यहाँ के जो कार्य हैं जो तथाकथित एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं उसमें उसकी रुचि नहीं होती। कुछ शोध छात्र तथा दार्शनिक ऐसे हैं जो काम वासना पूर्ण जीवन या अन्य विषय का अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवद गीता के अनुसार ऐसा शोध कार्य और दार्शनिक चिंतन निरर्थक है, यह एक प्रकार से व्यर्थ होता है। भगवद गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से वह आत्मा की प्रगति के विशेष विषय में शोध करे, उसे चाहिए कि वह अपनी आत्मा को समझने के लिए शोध करे। यहाँ पर इसी की संस्तुति की गई है, जैसे कि हम लोग प्रचार में भी इस बात को बोलते हैं कि क्या हम लोग विचार करके देखें तो क्या हम लोग शरीर हैं, या हम लोग हाथ हैं, क्या हम अपने आंख हैं। इस प्रकार के दार्शनिक चिंतन के द्वारा व्यक्ति इस निष्कर्ष पर आएगा कि वो शरीर नहीं है, और ये हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए लाभकारी है। लेकिन जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जैसे फ्रायड इत्यादि जो फिलोसोफर हैं वो काम वासना के ऊपर दार्शनिक चिंतन किए हैं, तो उसका कोई लाभ नहीं है। काम वासना से तो एक बीमारी है और उसका एनालिसिस करने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि उसको वो लोग बड़ा अच्छा मानते हैं। तो ऐसे बुद्धों की शरण में हमें नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार के दार्शनिक चिंतन से कोई फायदा नहीं है। जहां तक आत्म साक्षात्कार का संबंध है, यहां पर स्पष्ट उल्लेख है कि भक्ति योग ही व्यवहारिक है, क्योंकि अन्य जो योग पद्धतियां हैं उनके द्वारा प्रगति बहुत धीरे होती है और बहुत कठिन होती है करने के लिए। जो ही भक्ति की बात उठे तो मनुष्य को चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा के संबंध पर विचार करे। आत्मा तथा परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते, विशेषतया भक्ति योग में तो कभी नहीं। परमात्मा के प्रति आत्मा की यह सेवा नित्य है, जैसा कि स्पष्ट किया गया है। अतएव भक्ति शाश्वत या नित्य है, मनुष्य को इसी दार्शनिक धारणा में स्थित होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ऐसा नहीं है कि कृष्ण भक्ति मैं आज कर रहा हूं लेकिन आगे जाकर मुझे भक्ति करने की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं भगवान बन जाऊंगा। ये भावना से व्यक्ति को मुक्त रहना चाहिए।